ओम शांति। 14-12-83 के अव्यक्तवाणी के आधारित, जो कल सभी ने सुन चुके हैं अव्यक्तवाणी, उसके आधारित हमें होमवर्क मिला था डूज एंड डोंट्स मेथड, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम ब्राह्मण बच्चे को बाप दादा की, यानी यही है, एक आस है कि हर एक बच्चा श्रीमत पर चले। यदि श्रीमत में हमने मनमत मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएंगी, माया आ जाएंगी, और हाया के बदले, यानी वावा के बदले हाया करना पड़ेगा तो कि माया आ गई। तो इस पर दुनिया की एक कहावत मुझे याद आ रही है कि जैसे इंसान, यानी करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है। इसलिए करो वही जो भगवान कहे। इसलिए जो भगवान हमें कहते हैं कि मेरे श्रीमत पर चलो, तो हमें भी श्रीमत पर चलना है और पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। तो अव्यक्तवाणी के आधारित हमने 4 पॉइंट्स निकाले हैं, तो उसमें हम सुनेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बाप दादा जब मधुबन निवासी को मिल रहे थे, तो मिलते समय यानी बाबा ने, यानी मधुबन निवासी की महिमा की है कि जो मधुबन की महिमा है वो मधुबन निवासी की महिमा है, यानी मधुबन निवासी यानी साकार के समीप का अनुभव करने वाले, यानी साकार के समीप में रहते हो। तो उसके लिए बाबा ने 3 बातें बताई है। एक यानी मधुबन निवासी दर पर रहते हैं, और दूसरा क्या बताया, हाँ यानी घर में रहते, दर पर रहते हैं, दूसरा घर में रहते हैं और दिल पर रहते हैं। तो इसलिए उसको यानी कोई यानी फिक्र करने की जरूरत नहीं, यानी किसी भी बात की यानी क्या नहीं करना है, चिंता नहीं। बाबा ने कुछ और शब्द बोला है उसके लिए, हाँ योग लगाने की जरूरत नहीं, यानी निरंतर योग में रहना है और मेहनत नहीं करना है उनको। तो इस पर हम ये करेंगे चिंतन इसका कि क्या करना है बाबा ने बोला, क्या नहीं करना है। तो उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी है और निरंतर योग में रहना है और योग लगाने का पुरुषार्थ करना है। तो दूसरा पॉइंट है मधुबन यानी मधुबन निवासी के साथ साथ विशेषता, मधुबन की और मधुबन निवासियों की बाबा ने विशेषता बोली है। तो जो विशेषता में बोला है कि मधुबन में हर बार हर समय कोई न कोई यानी एडिशन होती रहती है, जैसे वापर होते वैसी स्थूल में भी कोई न कोई नवीनता होती रहती, वैसे चैतन्य में भी कोई न कोई नवीनता का यानी नवीनता हो और उसका वर्णन करे। तो उसके लिए बाबा ने 3 लहरें बताई है। तो एक आनंद की लहरें, और दूसरी जी हाँ प्यार की लहरें, और तीसरी यानी जी ज्ञान की विशेषताओं की लहरें। तो इस लहरों में लहरों बोलते हैं आप, यानी इस विशेषता का वर्णन करो। तो उसके लिए बाबा ने बोला जैसे सागर का मिसाल दिया है, सागर के नजदीक अपन जाते हैं उसके लहरों में जाते हैं, तो क्या होते हैं उसके लहरों में लहराना ही पड़ता है अपन को। यदि नई लहरें तो क्या होता है यानी डूब जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो लहरों की विशेषता है वो स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा बाबा ने उसके लिए एग्जाम्पल दिलवाड़ा मंदिर का दिया है, जैसे दिलवाड़ा मंदिर है उसकी विशेषता बहुत कुछ है, और उसके हर एक कमरे में यानी जो डिजाइन है वो अलग अलग डिजाइन दिखाई है, और हर एक कमरे में जो विशेषता है वो अपनी अपनी विशेषता है। तो जैसे उनकी विशेषता इसके कारण वो मंदिर का न्यारा है, सब मंदिरों से न्यारा है ना दिलवाड़ा मंदिर, इसलिए भगवान भी उसकी महिमा करते हैं। तो बाबा वैसे ही बोलते आपका जो दिलवाड़ा मंदिर है उसमें भी आप जो चैतन्य मूर्ति है यानी उसकी भी जो विशेषता है वो दिखाई दे हर एक को। तो ये बाबा ने बोला है, और वो भी वर्णन करे हमारी विशेषताओं का। जैसे वो लोग मंदिर देखते हैं ना तो बोलते हैं बनाने वाले की कमाल है, तो वैसे हमारी विशेषता की वो कमाल करे। तो इसलिए बाबा ने हमें ये बातें बोली है। तो उसमें हमें क्या करना है यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हमारे हम मनन चिंतन से हमने निकाला है कि जैसे जो लहरें है यानी हर विशेषताओं की लहरों में हमको लहराना है और उसमें डूबना नहीं है। और तीसरा पॉइंट बाबा मैंने वरदान से लिया है कि बाबा ने वरदान में बोला है कि जो बच्चे वो क्या करते हैं, दिल में एक दिलाराम बाप को रखना है, वो और वाह-वाह के गीत गाने बोलते, और उसमें क्या करना नहीं है, हाय हाय नहीं करना है। तो उसके लिए बाबा ने तीनों कालों का बताया है, जैसे कोई भी यानी मन में बात है, अब मन से कोई भी क्या करना है, मन से यानी हमारे मन में यानी कोई निगेटिव संकल्प आते हैं, तो वो निगेटिव संकल्प नहीं आने, जो हो गया उसको भी वाह वाह बोलो बोलते, वो होने वाला है उसको भी वाह वाह बोलो, और जो हो चुका है उसमें भी वाह वाह बोलो। यानी तीनों कालों में यदि अपन वाह वाह बोलेंगे तो सब अच्छा ही होगा बोलते, और जो अच्छा ही है वहां पर क्या होता है, हाँ इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, तो इसलिए सब अच्छा ही होना है। तो इस पर हम क्या नहीं करना है और क्या करना है, यानी हाय नहीं करना है, हर समय वाह वाह करना है। और तो चौथा पॉइंट है, यानी हम ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मण बन गए तो क्या हुआ, यानी हम प्रभु प्रेम यानी प्रभु परिवार के बन गए, तो प्रभु परिवार के होने के कारण प्रभु का हमें हर पल प्यार मिल रहा है ना, यानी और अलौकिक प्राप्तियों का ये हो रहा है, यानी प्राप्ति हो रही। तो बाबा बोलते उस झूले में झूलो, यानी अप्राप्तियों के यानी प्राप्ति हो के झूले में झूलो बोलते। तो जो प्राप्ति हुई, तो प्राप्ति होने के बाद का छह बातें बाबा ने बोली है कि हमें प्राप्ति हुई है, तो छह बातें बदल जाती है। उनमें से पहली बात बोली है बाबा ने कि परिवार बदल गया, दूसरा युग बदल गया, तीसरा यानी धर्म और कर्म बदल गए, चौथा युग परिवर्तन होने के कारण यानी दुखमय संसार से हम सुखमय संसार में आ गए, और पांचवा बोला है बाबा ने कि यानी साधारणता से हम यानी पुरुषोत्तम बन गए, और लास्ट छठवा है कि 63 जन्मों के कीचड़े से हम कमल में आ गए। तो इस पर हम क्या करना और क्या नहीं करना, इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। तो पहला बोला बाबा ने कि परिवार बदल गया, तो हम पहले के अलौकिक परिवार लौकिक परिवार में थे, तो लौकिक परिवार में होने के कारण हम साधारण थे, तो बाद में जैसे बाबा के बन गए तो हम अलौकिक परिवार में आ गए। तो हमें लौकिक परिवार को भूलना है और अलौकिक परिवार को याद में रखना है। दूसरा युग परिवार युग बदल गया, तो हम अभी हमारे लिए पहले का कलयुग था, जैसे भगवान ने अपना बना लिया तो हम संगम युग पर आ गए। तो संगम युग पर क्या करना है, हमें कलयुग को भूलना है और सतयुग को स्मृति में रखना है। तीसरा यानी धर्म और कर्म बदल गए, पहले हमारे धर्म और कर्म साधारण थे, अभी हम ब्राह्मण धर्म के हो गए और श्रेष्ठ कर्म करना है हमें। और चौथा युग परिवर्तन होने के कारण दुखमय संसार से सुखमय संसार में आ गए हम। तो पहले कलयुग का जो दुखमय जीवन था उसको हमें भूलना है, और सतयुग के जो सुखमय जीवन में हम जाएंगे उसको स्मृति में रखना है। और बाद में पांचवा है कि हमारा क्या हो गया, पांचवे में साधारण था से पुरुषोत्तम बन गए। तो पहले हमारे जीवन साधारण था, तो उस समय हमारे जो संस्कार भी थे यानी विकारी थे, तो वो विकारी संस्कारों को हमको क्या करना है, समाप्त करना है, और पुरुषोत्तम जो दिव्य संस्कार है उसको धारण करना है। और लास्ट जैसे 63 जन्म का जो कीचड़ था हमारे आत्मा के ऊपर यानी उसको हमें योग बल से समाप्त करना है और दिव्य गुण को धारण करना है। तो इस प्रकार हमें चिंतन किया था। तो जैसा बाबा बोलते कि मेरे श्रीमत पर चलो तो आप आगे बढ़ेंगे पुरुषार्थ में, तो यदि श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या हालत होती है, इस पर मुझे कहानी याद आ रही, छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी यानी वो जोक्स है, यानी कहानी नहीं, वो जोक्स हम कहानी के रूप में लेंगे कि एक व्यक्ति था, उसका अंतिम समय नजदीक आया था, तो नजदीक आने के कारण वो धर्मराज ने अपना दूध भेजा कि उसको लेके आओ ऊपर। तो फिर जब वो धर्मराज आया उनके पास, तो आने के बाद उसने देखा धर्मराज का दूत आया तो कि वो समझ गया, घबरा गया कि काय के लिए आए। उसने पूछा आप काय के लिए आए हो, तो वो बोले आपको ले जाने के लिए, क्योंकि बोले मेरा तो अभी समय हुआ नहीं, बहुत बाकी ही, बोलते मेरा एज भी नहीं उतना ज्यादा हुआ, और मेरे को लौकिक परिवार के बहुत सारे कार्य करने हैं और भगवान को भी याद करना, इतने जल्दी क्यों लेके जा रहे। वो बोलते नहीं, मेरे को धर्मराज एक लिस्ट दी बोलते, वो लिस्ट में आपका पहला नंबर है बोलते, इसलिए सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा बोलते। तो बोलते ठीक है ले जाए, तो मगर अपन क्या करेंगे, अभी चाय पी कर जाएंगे बोलते। तो अभी आए है तो वो चाय बनाता है, एक जोक से है, नहीं रियल कहानी नहीं ये वाली। तो फिर वो चाय बनाते, उस चाय में क्या करता है, थोड़ा बनाने के बाद बेहोशी यानी वो नींद की दवाई रहती है वो डाल देता है और उसको दे देता है। और देने के बाद उसको धीरे धीरे यानी बेहोश हो जाता है वो और गहरी नींद में चला जाता है। बाद में उसकी लिस्ट देखता है, उस लिस्ट में देखता है इसका सबसे ऊपर नाम था, तो वो क्या करता है वो कट कर देता है वो नाम और सबसे नीचे लिख देते हैं अपना नाम। और बाद में वो बोलते मेरा काम हो गया अभी, क्योंकि पहले ये लोगों को ले जाएंगे तब तक मैं कुछ तो कर सकता हूँ, बाकी समय मिलेगा मेरे को। तो बाद में वो दूत को धीरे धीरे होश आ जाता है, होश आने के बाद एकदम उसको फ्रेश लगता है कि उसको बोलते, वो बोलते हैं उसकी महिमा करता है कि आपकी चाय में कितनी कमाल है, बोलते कि मैंने जिंदगी में कभी इतनी नींद मेरे को आई नहीं थी, इतनी अच्छी नींद गहरी आ गया बोलते, क्योंकि आपने मेरे पर एहसान किया बोलते, फिर मैं भी आपके ऊपर एहसान कर देता बोलते। तो अभी क्या करता बोलते, मैं यानी ऊपर से लेता था बोलते, लिस्ट में आपका पहला नंबर था, अभी मैं लास्ट से यानी ये करता हूँ बोलते। तो बाद में बोलते बेटा जब आपने ये किया तो जब क्योंकि जाना तो आपको ही बोलते फर्स्ट में या लास्ट में, क्योंकि नंबर तो आपका ही लगा बोलते। तो इस कहानी से ये अर्थ निकलता है कि इंसान जो चाहता है यानी जो यानी करना चाहता है वही चाहता है, मगर भगवान क्या करता है यानी होता वही है जो भगवान करता है, इसलिए करो वही जो भगवान कहे। इसलिए जो भगवान जो हमें श्रीमत देता है उसे श्रीमत पर हमें चलना है और पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। जैसे दो तीन दिन पहले सुशील भाई ने बोला था आपका नंबर कटा नहीं फिर आएगा दोबारा, जैसे विठल भाई ने बताए थे ऐसे हुआ मेरे लिए। दोबारा ट्रायल किया ही नहीं था फिर। तो अभी अभी भी सुशील भाई ने बोला कि आपका नंबर है तो मैं कमरे की तरफ ही जाने वाला था, नहीं नहीं आपको बोल के सुशील भाई लेके आए। तो मेरी जेब में ऐसे हाथ लगा के देखा चिटकी में थोड़ा वो नोट किया हुआ था, ये भी उधर ही कहीं छूट गया है। तो इसमें एक कहानी याद आ गई मेरे को, मेरा जो शीर्षक भी यही है वो जो होमवर्क दिया गया है उसमें कथा कहानी जो भी होते सुना देना। कहा बात है तो एक नेपाल के बहुत बड़े धुरंधर कवि थे, तो नेपाल अमेरिका में जो कवि सम्मेलन था तो वो कवि सम्मेलन में गए हुए थे, तो उनको लगा कि यहाँ के लोग कितने सभ्य है, शिक्षित है, कितनी इनके पास में जो स्पिरिचुअलिटी है आध्यात्मिकता में कितनी महान है, वो इसको भी चेक करनी चाहते थे। तो बहुत नामी ग्रामीण थे ऐसे वो कवि, अभी भी महाकवि की लिस्ट में गिने जाते हैं उनको। तो वहाँ जब गए थे तो पहले दिन जब गए थे कवि सम्मेलन में, कोई बातें यहाँ कभी भी रिपीट तो हो चुकी है, पहले दिन जब गए थे तो फटे टूटे कपड़े पहन के गए थे। तो वहाँ जाने के बाद में उनको किसी ने भी कुछ पूछा ही नहीं और अंदर घुसने नहीं दे रहे उसको। इतने बड़े कवि, तो मैं कवि हूँ वहाँ से आया हूँ उन्होंने बोला, फिर भी उनको अंदर जाने नहीं दिया। तो उनको लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी लिखो देखो लोग तो कपड़े को ही देखते हैं, कवि का तो व्यक्तित्व तो अंदर की होती है, कपड़े से तो होता नहीं। फिर भी उस दिन ऐसे ही निकल गया उनका, और उनको चाय तक भी लोगों ने नहीं पिलाया अंदर। नाश्ता पानी की जो व्यवस्था थी, जैसे कि निकृष्ट व्यवहार किया उनके ऊपर। दूसरे दिन फिर उन्होंने टाई सूट बूट सब पहन के गए थे, तो पहले से वेलकम हुआ उनको, ऐसी जगह पर बिठाई गई और उनको अच्छी तरीके से खिलाने पिलाने, चाय जितने भी वहाँ का व्यंजन बने हुए थे उनको खिलाए पिलाए, तो वहाँ लाके दिए सबको, उनके टेबल के ऊपर रख दिए गए। तो उन्होंने सारी जो भी चीजें थी अपने कपड़े में रगड़ना शुरू कर दिया, प्लेट से जो भी आइटम थी ऊपर से नीचे तक। तो लोग हैरान हो गए ये क्या हो रहा है। तो ऐसा लगा कि ये तो कोई पागल आ गया इसके अंदर हमारे कवि सम्मेलन में। तो उन्होंने इतनी अच्छी उत्तर दी कि कल मैं व्यक्ति तो हुई है, कल भी हुई था आज भी हुई है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अच्छा बन के आया हूँ, कपड़े पहन के आया हूँ, इसलिए मुझे इतनी अच्छी तरीके से खातिरी हुई। कल तो मुझे पानी तक भी किसी ने नहीं पूछा, इसीलिए यहाँ का जो व्यक्तित्व को समझने की जो खूबी नहीं है इसीलिए आज मैं इसी को खिला रहा हूँ, इसी को पिला रहा हूँ। तो आज भी संसार कपड़े को ऊपर से नीचे तक लगा दी। तो लास्ट टाइम उनको जब कविता तो सुनाना था तो उनकी चिटकी ही गुम हो गई थी। फिर भी उन्होंने जो पहले प्रैक्टिस किया था तो उस अनुसार से उन्होंने अच्छी तरीके से अपना वक्तव्य दिया था। तो अभी भी नेपाल के हिस्ट लिस्ट में नाम है उनका, देवकोटा के रूप से। तो इसमें बाबा ने हमें पटरी जो ट्रेन की बातें सुनाई थी, ट्रेन जो होता है पटरी के पीछे तो सभी डब्बे रहते हैं, आगे इंजन है। तो यह मधुबन निवासी को जो पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला चारों सब्जेक्ट में नंबर वन होने चाहिए। मधुबन बालों को तो सभी याद करते हैं, कुछ भी होता है तो अथक सेवाधारी के रूप से मधुबन बालों को सभी स्मृति में लाते हैं। तो यह ट्रेन की बातें जब याद आई बाबा ने जो सुनाए, तो इसमें एक कहानी है जो आप सबको आगे रखूंगा। तो ये कहानी ऐसा है कि एक व्यक्ति तीन चार दिन से स्टेशन में पड़ा हुआ था। तो कल भी सभी बेडिंग बिस्तर बैठा बांधा हुआ था, लेकिन कल भी यही था, आज भी यही। उस समय की जो ट्रेन जो होती थी, जो लोकल ट्रेन और जो इतने एसी, जैसे कि अभी सिलपुर में सोते आते हैं, ऐसी व्यवस्था होती नहीं थी लोकल ट्रेन, ऐसे कि होलसेल में बैठते। तो इस तरीके से तीन चार दिन से स्टेशन में पड़ा हुआ है। तो उसको पूछा गया कि कल भी यही था, परसों भी यही था, तरसों भी यही था, वो क्या रहा है तुम्हें बोल के। तो उसको पूछा गया कि जब ट्रेन आती है ना तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। ट्रेन की आवाज आई, ट्रेन पहुंच गया तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उसने सोचा कि अभी ट्रेन आने से पहले एक से उसने थोड़ा सा बातें बनाई कि थोड़ा मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, ट्रेन आएगा तो मुझे ट्रेन में बिठा देना, बाद में तो होश खुल ही जाएगा। तो उसने ठीक है बोल के पैसा दे दिया, काफी पैसा दे दिया, जितना चढ़ा के सामान उठाना पठाना जितना जितना लगना चाहिए था उससे काफी ज्यादा दिया था। तो ट्रेन पहुंच गई, तो ट्रेन पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। तो उसने सोचा कि जिसको बोल के रखा था उसने फिर उसको व्यवस्थित तरीके से बिठा दिया, सामान सेट कर दिया, और फिर उसको लगने लगा कि जो इतना पैसा जो इसने दिया है ये तो बहुत ज्यादा है। उस समय तो हम लोगों को तुलना करने की ज्यादा लगता था कि ज्यादा हो गया है। तो उसने सोचा कि जो जिसको बोल के उसने बोला था वो हजम था, तो बोला कि अभी इसको कहीं ना कहीं तो जाके बाल कटना ही होगा, अभी बेहोश में है, इसका दाढ़ी मुझ सब काट देता हूँ बोल के उसने वही छुरा और कैंची चलाना शुरू कर दिया। तो अच्छी रीति से उसकी कटिंग हो गई। फिर बाद में जब होश आ गया आगे जाने के बाद में, तो फिर उठ के बाथरूम में कहीं गया, देखा तो मैं कौन हूँ, उसको एकदम आश्चर्य हो गया। बाल वाल सब कटे हुए, कुछ बुरे छिलके उतार दिया मेरे जैसे लग रहा है। तो उसको मैं कौन हूँ, उसको हैरान हो गया उसको, पहले मैं तो ऐसा नहीं था। तो बाद में अंदर में एक सन्यासी बैठा हुआ था, उसको भी भक्ति करते करते बहुत बैरागी आ गया था, इतना बैरागी आया था कि मैं कौन का उत्तर ही नहीं मिल रहा था। वो भी हरिद्वार ऋषिकेश के तरफ जा निकल रहा था, आया हुआ था, तो उसका क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा था। उसको बाथरूम से आवाज आ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो उसने सोचा कि मैं तो उधर घर गांव में घूम रहा था कि मैं कौन बोल के, अभी तो ये बाथरूम से कोई व्यक्ति आवाज कर रहा है, एक दूसरे मेरा भी दोस्त मिल गया लगा अब। तो बाद में उसने तो आकर के पूछा कि तुम क्यों ऐसे मैं कौन आवाज आ रहा है, तो तुम ही हो क्या बोला। उसने बोला हाँ मैं हूँ। तो क्यों ऐसा हुआ, पहले मैं ऐसा नहीं था बोला। अच्छा, तो फिर उसने बाद में बताया कि थोड़ा होश आ गया उसको कि हाँ पहले मैं ठीक ठाक चढ़ा था, अभी मेरा बाल किसी ने काट दिया, इसीलिए मैं आश्चर्य लगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तेरा क्वेश्चन अलग है, मेरा क्वेश्चन अलग है। मैं भी मैं कौन को पता करने के लिए हरिद्वार ऋषि के साधु महात्माओं के पास जा रहा था, मैंने सोचा कि दूसरा कोई मेरा दोस्त मिल गया। तो उसने फिर बोला कि ठीक है, तेरा क्वेश्चन अलग है, मेरा क्वेश्चन अलग है। तो इसी रीति से क्या होता है कि जब हम मधुबन आ रहे थे पहली बार मधुबन आ रहे थे, तो एक भाई हमारे सीनियर भाई थे, उन्होंने थोड़ा मूंछ लंबा पाले हुए थे मैंने भी बदबू आते आते, तो उन्होंने बोला कि के भाई में तो ऐसे मूंछ रखते नहीं है, तो आपको है ना ये वहाँ जाने से पहले ये काम करना पड़ेगा बोला। तो तीन चार दिन तो लगता ही है, तो फिर यहाँ मधुबन पहुँचने से पहले जयपुर आ गए ही हमने है ना मूंछ निकाल दिया था। तो मेरे को भी लग रहा था कि मैं कौन ही जैसा हो गया था, अब तो जैसे कि अनफिट जैसा लग रहा था। तो इस रीति से बाबा हम सबको ऐने में देखा ना, ऐने में तो बैठ के काटते हैं। तो इसी रीति से देखिए बाबा ने हम सबको ये सब मैं कौन का जो बाबा ने बोला कि स्मृति दिलाओ अपने आप को, तो स्मृति दिलाने से ही स्मृति अभी भी दादी देखे 82 ईयर से ज्ञान में हमारी दादी इतनी पुरानी हो गई, अभी भी नशा चढ़ाने के लिए हम सबको जब जहाँ भी आती है तो मैं कौन और मेरा कौन ये स्मृति सबको दिलाती है। अच्छा, तो इसीलिए हम सबको भी ये स्मृति में अगर हम रहते हैं तो वो स्वरूप बनना सहज हो जाता है। तो स्वरूप बनने से ही बाबा ने बोला कि चेहरे से चलन से जिस प्रकार की जो अनुभूति होनी चाहिए, और सब बाबा ने बोला कि यह लहरें अनेक प्रकार की होनी चाहिए, हर साल नवीनता की। यहाँ आने वाले सभी कहते हैं ना कि पिछले साल यहाँ पर यह काम हो रहा था, इस पाल यह हो रहा है, तो वो फिजिकली रूप से स्थूल रूप से तो सबको चेंजेस लगता है, लेकिन यहाँ पर जो जो भी कभी आनंद की लहरें, कभी प्रेम की लहरें, कभी सुख की लहरें, कभी शांति की लहरें, इस प्रकार के आप प्रोजेक्ट बनाओ, लक्ष्य बनाओ, मीटिंग रखो। जैसे बाबा ने सतयुग की स्मृति दिलाए, वहाँ इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, इतना स्मृतियाँ होती है जैसे कि सुनी सुनाई बातें हैं। तो ऐसी लहरें बनाओगे तो चारों सब्जेक्ट में आप 100 मार्क्स ले सकेंगे। तो यही बाबा ने सुनाया। ओम शांति।